विद्रोह का आरंभ। महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र के इस भाग का विशेष महत्व है। उनके चरित्र के इस भाग से संबंध रखने वाली बहुत सारी बातों का पूरा पूरा विचार ना करने के कारण बड़े बड़े अंग्रेज लेखकों, विद्वान, ग्रंथकारों और प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। इससे अधिक खराब बात और कौन सी हो सकती है कि जो हिंदू अबला ब्रिटिश सरकार की उदारता, न्यायप्रियता और मित्रता पर दृढ़ विश्वास रखे, वही समय के फेर में फंसकर विद्रोही समझी जाए। इतिहास से पता चलता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुटिल नीति से सतारा, नागपुर, तंजौर, झांसी, अवध आदि अनेक देशी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाकर भारतवर्ष के स्वराज्य का सुख भोगने वाले अनेक प्राचीन और प्रतापी राजाओं को दुखी किया था। जब सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी विलायत गए और उनके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होकर भारत में आए, तब वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि लॉर्ड डलहौजी की राजनीति से किस तरह नुकसान होने का डर है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विदा होने के समय उन्होंने ये कहा था कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे शासन समय में भारतवर्ष में पूरी शांति रहे। मुझे मालूम है कि उस देश के राजनीतिक आकाश मंडल में एक छोटा सा टुकड़ा अचानक आकर तुरंत चारों ओर फैल जाएगा और एकदम मूसलाधार बारिश करके हम लोगों की दुर्दशा कर डालेगा। सन 1857 ईस्वी के आरंभ में भारत में जो असंतोष की आग एक बार लग गई थी, वह धीरे धीरे सुलगने लगी। उसी समय सरकारी सेना में इस बात की चर्चा फैल गई कि कारतूसों में, जिनका काम सेना के हर सिपाही को पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। उन लोगों ने ये मान लिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म भ्रष्ट किए जा रहे हैं। उस समय उन लोगों को सरकार से घृणा करने का यह एक अच्छा मौका मिल गया। उन देशी रियासतों के लोग, जिनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे, पहले से ही अंग्रेज सरकार से नाराज थे और इसी समय सरकारी सेना के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के मन धर्म भ्रष्ट होने के डर से क्षुब्ध हो गए थे। जिस तरह साफ आकाश अचानक काले काले बादलों से छा जाता है और भयानक बारिश होने लगती है, उसी तरह भारत में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ। सबसे पहले बंगाल में बरहामपुर की 16वीं काली पलटन ने अपना प्रचंड रूप प्रकट किया। ये बात जल्दी ही सारे देश में फैल गई, जिससे हर जगह असंतोष की आग एकदम प्रज्वलित हो उठी। 25 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में तीसरी कैवलरी रिसाला ने सरकार के विरुद्ध काम शुरू कर दिया। मेरठ और आसपास की सारी सेना ने एकत्रित होकर मई महीने में बहुत भयानक विद्रोह कर दिया और मेरठ पर अधिकार करके वह दिल्ली की ओर रवाना हो गई। वहां भी उनको सफलता मिली। उन लोगों ने दिल्ली के आखिरी बादशाह को, जिसकी ताकत उस समय हर तरह से कम हो गई थी, फिर से तख्त पर बैठाया और वहां पूरा अधिकार जमा लिया। मेरठ और दिल्ली के विद्रोह की खबर सारी जगहों की सेना में पहुंच गई। फिरोजपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ आदि सब जगहों में विद्रोह होने लगा। विद्रोहियों ने दिल्ली को तो पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, अब नाना साहब पेशवा और अवध के नवाब भी, जो ब्रिटिश शासन से दुखी थे, विद्रोहियों में शामिल हो गए। जब अंग्रेज सरकार की तत्कालीन राजनीति से असंतुष्ट होकर देश के बड़े बड़े राजघराने के लोग भी विद्रोहियों की सहायता करने लगे, तब सैनिकों के विद्रोह को पूरा पूरा राजकीय और भयानक रूप प्राप्त हो गया। इस बलवे का समाचार झांसी में भी पहुंचा। उस समय वहां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 12वीं पलटन, 14वीं इरेगुलर कैवलरी और एक तोपखाना, इतनी सेना थी। इस सेना के मुख्य अधिकारी कप्तान डनलप थे। उनका यह विश्वास था कि उनके सिपाही कभी बलवे में शामिल नहीं होंगे। मई महीने की 18 तारीख तक झांसी में किसी तरह विद्रोह के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। झांसी के कमिश्नर स्किन साहब को बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्यों के संबंध में भी कुछ डर नहीं था, क्योंकि उस समय ओरछा, छतरपुर और अजयगढ़ के राजा नाबालिग थे और शेष सब राजाओं का प्रबंध अच्छी तरह कर दिया गया था। सब निश्चिंत थे, क्योंकि लक्ष्मीबाई उस समय संसार के सारे वैभवों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन होकर अपने दिन व्यतीत कर रही थी। उनकी सहनशीलता और राजभक्ति पर सब लोगों को विश्वास था, परंतु अंग्रेज लोगों की असावधानी से 4 जून को अचानक सेना में विद्रोह के निशान दिखने लगे। 7वीं काली पैदल पलटन के गुरुबख्श नाम के एक हवलदार ने कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर स्टार फोर्ट में प्रवेश किया और वहां से बारूद, गोले, बंदूक आदि लड़ाई का सारा सामान लेकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जब ये समाचार कप्तान डनलप को पता चला तो उन्होंने अपनी बची हुई सेना इकट्ठी करके स्टार फोर्ट पर धावा करने का निश्चय किया, परंतु वहां लड़ाई का सारा सामान और खजाना विद्रोहियों ने पहले ही अपने अधीन कर लिया था। वहां के रहने वाले भी विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। इस भयानक स्थिति को देखकर सारे अंग्रेज छावनी से निकलकर शहर में आ गए। दूसरे दिन अर्थात 5 जून की सुबह कप्तान स्किन और गार्डन साहब डिप्टी कमिश्नर कप्तान डनलप से मिलने के लिए छावनी आए। वे कप्तान डनलप से कुछ गुप्त बातचीत करके किले में चले गए। कप्तान डनलप ने छावनी में गोला बारूद का कुछ प्रबंध किया और वहां से टेलर साहब को अपने साथ लेकर वो परेड पर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वैसे ही 12वीं पैदल पलटन के सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। अंग्रेजी फौज के मुख्य अधिकारी को मारकर विद्रोहियों ने बहुत खुशी मनाई और कई अंग्रेजों को मार दिया। इस समय करीब 45 यूरोपियन और यूरेशियन अफसर अपनी जान बचाने के लिए किले में भाग गए। कप्तान स्किन ने इन सारे लोगों को बंदूक, गोली, बारूद आदि लड़ाई का सामान देकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए तैयार रखा था। किले के दरवाजे बहुत मजबूती के साथ बंद कर दिए गए थे। जब विद्रोहियों ने झांसी की छावनी को तहस नहस करके किले पर हमला किया, तब किले के अंदर रहने वाले अंग्रेजों ने लोगों को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु विद्रोहियों की अधिक प्रबलता देखकर उन लोगों ने किले से स्कॉट और पर्सल बंधुओं को महारानी लक्ष्मीबाई के पास सहायता मांगने के लिए भेजा। विद्रोहियों ने उनको रास्ते में ही पकड़कर मार डाला। कमिश्नर स्किन ने नागौद, ग्वालियर आदि स्थानों से अपनी सहायता के लिए सेना भेज देने के लिए विषय में पत्र लिखे थे, परंतु 7 जून तक कहीं से कुछ मदद नहीं पहुंची। उसी दिन दोपहर को विद्रोहियों ने किले पर धावा किया। किले के अंदर रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपनी रक्षा के लिए बहुत कोशिश की, परंतु विद्रोहियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वे साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। परंतु जब किले के अंदर विद्रोहियों का प्रवेश नहीं हो पाया, तब वे लोग किसी गुप्त रास्ते से किले के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। झांसी के असिस्टेंट सर्वेयर लेफ्टिनेंट पाविस किले के अंदर आते समय अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को भी ले आए थे। वे लोग विद्रोहियों से मिलकर उनको किले के अंदर आने का गुप्त रास्ता दिखाने लगे। ये समाचार पाकर लेफ्टिनेंट पाविस ने उनको रोकना चाहा, परंतु इतने में ही उन सिपाहियों में से एक सिपाही ने उनको तुरंत मार डाला। विद्रोहियों की सेना जान पर खेलकर बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और एक एक कदम किले की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसने किले के दरवाजे खोलने के बहुत उपाय किए, परंतु वो सफल नहीं हुए। कप्तान गार्डन किले के अंदर की खिड़कियों में से बागियों पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। उनका चेहरा विद्रोहियों की सेना में सब लोग पहचानते थे। उनमें से एक विद्रोही ने गार्डन साहब पर तीर चलाया, जिससे वे मारे गए। उनकी मृत्यु से किले के अंदर सब लोग अधीर और हताश होने लगे। ठीक इसी समय गोला बारूद आदि लड़ाई का सामान भी उनके पास खत्म हो गया। विद्रोहियों के मुखिया काले खां रिसालदार और अहमद हुसैन तहसीलदार ने बहुत वीरता से युद्ध करके किले का बहुत बड़ा भाग अपने हाथों में ले लिया। तब अंग्रेजों ने निराश होकर प्राण रक्षा के लिए सुलह का प्रस्ताव रखा। तारीख 8 जून को सुबह विद्रोहियों के मुखिया खुशी मनाते हुए किले के दरवाजे के पास जा पहुंचे। उन लोगों ने हकीम सुले मोहम्मद नाम के एक प्रतिष्ठित रईस को अपना प्रतिनिधि बनाकर कप्तान स्किन के पास भेजा। कप्तान स्किन किले का दरवाजा खोलकर बाहर आए और ये प्रार्थना करने लगे कि हम लोगों को किसी प्रकार का दुख ना देकर सागर जाने दीजिए। बागियों के प्रतिनिधि हकीम साहब ने कुरान की कसम खाकर कहा कि आप लोग हथियार रख दें और किले को खाली कर दें, आपको हम किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे। बेचारे संकट में फंसे अंग्रेजों ने बागियों के प्रतिनिधि का कहना सच मान लिया और अपने सारे हथियार किले में रखकर वे बाहर निकल आए। परंतु बहुत शर्म और खेद की बात है कि बागियों ने अपने कुरान की कसम खाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा भंग कर दी। जैसे ही अंग्रेज लोग शस्त्रहीन होकर किले के बाहर आए, वैसे ही विद्रोहियों ने दीन दी शब्द की प्रचंड गर्जना करके उनको घेर लिया और कैद करके शहर में घुमाते हुए जोगन बारा की ओर ले गए। शहर के बाहर पहुंचते ही कुछ सवारों ने वहां आकर ये संदेश दिया कि रिसालदार की आज्ञा के अनुसार इन सब लोगों को मार दिया जाए। झांसी के जेल दारोगा बख्शिश अली ने अंग्रेजों को 3 कतारों में खड़ा किया। पहली कतार में पुरुषों को, दूसरी कतार में स्त्रियों को, तीसरी कतार में बच्चों को। उसने अपने साथियों को सख्त ताकीद की कि जैसे ही मैं कप्तान स्किन का सिर उड़ा दूं, वैसे ही तुम अन्य सारे कैदियों को मार डालना। इस तरह उसने पहले कप्तान स्किन को मारा और फिर उसके साथियों ने अन्य सब लोगों को मार डाला। अब ये प्रश्न ये है कि इस भयानक कृत्य का महारानी लक्ष्मीबाई से क्या संबंध था? क्या विद्रोहियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज सरकार को हानि पहुंचाने का काम किया था? क्या उन्हीं की अनुमति से झांसी में अंग्रेजों को मारा गया था? इस विषय का निर्णय करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि किसी विलक्षण दैव योग से विद्रोह के बाद ही महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ा। इस बात का कुछ भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जब झांसी में पहला विद्रोह हुआ, तब लक्ष्मीबाई अपना बदला चुकाने और अपने क्रोध की शांति करने के लिए विद्रोहियों में शामिल हुई थी। कमिश्नर साहब के मन में झांसी के लोगों के संबंध में, विशेषतः महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। जब सेना में अचानक गड़बड़ होने लगी और विद्रोह के निशान दिखाई पड़ने लगे, तब कप्तान गार्डन और कई अंग्रेज महारानी के पास राजमहल में गए और उनसे विनती की कि यदि भविष्य में हम लोगों पर मुसीबत आए तो आप हमारी सहायता करें और झांसी की प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए हमें मदद दें। लक्ष्मीबाई ने कहा, इस समय हमारे पास ना तो अस्त्र शस्त्र है और ना ही लड़ने वाले कोई वीर पुरुष, फिर भी मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी सहायता करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी। इसी बात पर अंग्रेज अधिकारियों ने लक्ष्मीबाई को अपने पास कुछ नए शस्त्रधारी आदमी रखने की इजाजत दी थी। दूसरे दिन कप्तान गार्डन अकेले राजमहल आए और लक्ष्मीबाई से कहने लगे कि हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, परंतु ये समय ऐसा कठिन है कि हम लोग अपनी पत्नियों और बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें अपने महल में आश्रय दीजिए। लक्ष्मीबाई का अंतःकरण बहुत कोमल था। उन्होंने कप्तान गार्डन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब शहर में भी उपद्रव होने लगा, तब वे लोग अपनी पत्नियों और बच्चों को किले में ले गए। उन लोगों के किले में चले जाने पर भी महारानी लक्ष्मीबाई उन लोगों को गुप्त तरीके से बार बार धीरज दिलाती और उनकी सहायता कर रही थी। उन्होंने किले में अंग्रेजों की रक्षा का यथाशक्ति उत्तम प्रबंध किया। झांसी के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई के शामिल ना रहने का और उस भयानक प्रसंग में भी यथाशक्ति अंग्रेजों की सहायता करने का ऊपर लिखे हुए प्रमाणों से भी बढ़कर एक और पक्का प्रमाण है। झांसी के हत्याकांड से बचे हुए मार्टिन नाम के एक साहब ने आगरा से तारीख 20 अगस्त सन 1889 ईस्वी को महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र श्रीमान दामोदर राव साहब को एक पत्र में ये लिखा है, आपकी माँ के साथ बहुत क्रूरता और अन्याय का व्यवहार किया गया। सन 1857 ईस्वी के जून महीने में झांसी में यूरोपियन लोगों की जो हत्या हुई, उससे महारानी का कुछ भी संबंध नहीं था। केवल इतना ही नहीं, जब अंग्रेज लोग किले में चले गए, तब उन्होंने 2 दिनों तक उनको भोजन दिया। उन्होंने हमारी सहायता के लिए 100 हथियारबंद सिपाहियों को दिन भर किले में रख कर शाम को वापस भेज दिया। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने मेजर स्किन और कप्तान गार्डन को यह सलाह दी कि आप लोग यहां से भागकर दतिया के राजा के आश्रम में रहिए। परंतु उस समय उन लोगों ने यह भी नहीं किया। अंत में हमारी सेना, पुलिस और जेल के लोगों ने ही सब लोगों को मार डाला। ये पत्र एक ऐसे अंग्रेज का है जो झांसी के विद्रोह के समय वहां उपस्थित था। इन प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के विद्रोह के संबंध में पूरी तरह निर्दोष थी। झांसी के विद्रोहियों की खून और धन की प्यास नहीं बुझी तो उन लोगों ने शहर में जाकर राजमहल को घेर लिया और महारानी लक्ष्मीबाई को ये संदेश भेजा कि हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, खर्च के लिए 3 लाख रुपए दो, नहीं तो तोप से तुम्हारा महल उड़ा देंगे। ये समाचार जब लक्ष्मीबाई को पता चला, तब उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ विद्रोहियों को ये कहला भेजा कि इस समय हमारा सारा राज्य अंग्रेजों के अधीन है, हमारे पास धन नहीं है, हमारा एक एक दिन बहुत कष्ट से बीत रहा है, ऐसी हालत में हमको दुखी करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें तो धन के लालच ने घेर रखा था और वे बिना धन लिए वहां से हटने वाले नहीं थे। अंत में लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपयों के अपने आभूषण दे दिए, जिससे वे लोग प्रसन्न होकर खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का अमल महारानी लक्ष्मीबाई का कहते हुए दिल्ली की ओर चले गए। उस समय झांसी में एक भी अंग्रेज अपने राज्य का प्रबंध करने के लिए नहीं था। ऐसी स्थिति में महारानी लक्ष्मीबाई ने सेनादारी महकमे के शिरस्तेदार पंडित गोपाल राव लघाटे, माल महकमे के शिरस्तेदार यहसान अली और कमिश्नरी के शिरस्तेदार आदि बड़े बड़े सरकारी अफसरों को अपने पास बुलवाकर उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने ये सलाह दी कि सागर में अभी तक विद्रोह के कोई निशान दिखाई नहीं दिए हैं, वहां के अंग्रेज अधिकारियों को झांसी के विद्रोह की खबर दे देनी चाहिए, जिससे वे सचेत हो जाएं और पहले से ही अपनी रक्षा की अच्छी व्यवस्था कर लें। उन लोगों ने ये भी सलाह दी कि सागर के कमिश्नर से यह पूछा जाए कि अब झांसी का बंदोबस्त किस तरह किया जाए, इसी आशय का पंडित गोपाल राव शिरस्तेदार का लिखा हुआ एक पत्र सागर के कमिश्नर के पास भेजा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां के अंग्रेजों ने बहुत मेहनत करके सागर में विद्रोह नहीं होने दिया, और जब तक झांसी में कोई यूरोपियन अफसर नहीं भेजा जाता तब तक उस प्रांत के शासन का भार महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया गया। उस समय लक्ष्मीबाई के पास राजनीति निपुण और राज्य का प्रबंध करने वाले कुशल लोगों का अभाव था। उनके सारे पुराने सेवक झांसी से चले गए थे। हालांकि लक्ष्मीबाई बहुत चतुर और बुद्धिमान थी, फिर भी राजमंडलों में रहने वाली एक स्त्री थी। राज्य संबंधी जो बातें वो अपनी बुद्धि से निश्चित करती थी और जिन बातों की वे आज्ञा देती थी उनकी ठीक ठीक कार्रवाई उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाती थी। यदि उस समय उनके पास कुछ होशियार और राजनीतिज्ञ आदमी होते तो वे महारानी के सदव्यवहार, मित्र भाव और शुद्ध हृदय का परिचय भारत सरकार को उचित समय पर जरूर दिलवाते और उनके संबंध में सरकार की गलत राय होने नहीं देते, और यदि हो भी जाती तो वो उसको दूर करने की कोशिश करते। परंतु दुर्भाग्य से उनके पास उस समय राजकार्य में निपुण आदमी नहीं थे। जो दो चार आदमी जैसे उनके पिता मोरोपंत तांबे, लक्ष्मण राव बांडे और अन्य रिश्तेदार आदि थे, उन्हें राज प्रबंध का कुछ भी अनुभव नहीं था। उस समय झांसी दरबार में कुछ तो ओरछा आदि देशी रियासतों से आए हुए राजद्रोही, अनुभवहीन और स्वार्थी लोग थे और कुछ महारानी लक्ष्मीबाई के रिश्तेदार थे, जिन्हें राज्य प्रबंधक की जवाबदेही अथवा जिम्मेदारी का कुछ भी पता नहीं था। लक्ष्मीबाई के मन में यही विश्वास था कि उनकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार दरबार के लोग अंग्रेज सरकार को पत्र आदि भेजते होंगे। परंतु उस समय के दरबारियों की स्थिति का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज अफसरों को कई बार खलीते भेजकर अपनी मित्रता, सद्व्यवहार और शुद्ध हृदय का परिचय देने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने मंत्रियों से कई बार कहा था कि अंग्रेज अफसरों को पत्र द्वारा इस बात की सूचना दी जाए कि मैं अंग्रेजों की आज्ञा से ही झांसी राज्य का प्रबंध कर रही हूँ। उस समय के अंग्रेज अफसरों ने बिना कुछ समझे बूझे और बिना कुछ पूछताछ किए ही एक हिंदू राजघराने की स्त्री को, जो हमेशा ब्रिटिश सरकार के स्नेह रखने की कोशिश करती रहती थी, दुष्ट बागियों और हत्यारों की पंक्ति में बैठा दिया गया। इसी झूठे भ्रम के कारण अंग्रेजों ने निरपराधिनी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई करने का निश्चय किया। तब यही कहा जा सकता है कि देव की गति विलक्षण है, भविष्य बलवान है। जब झांसी में कुछ समय तक के लिए ब्रिटिश राज्य का सूर्य अस्त हो गया, तब चारों ओर से इस प्रांत पर आक्रमण होने लगे। शत्रुओं का दमन करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को नई सेना रखनी पड़ी। झांसी के महाराज गंगाधर राव के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंश का सदाशिव नारायण नाम का व्यक्ति खुद अपने को गद्दी का वारिस बताकर राज्य पर अधिकार पाने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। ये मौका पाकर उसने कुछ सेना इकट्ठी की और 13 जून 1857 ईस्वी को झांसी से 30 मील की दूरी पर करेरा के किले पर हमला कर दिया। उसने अंग्रेजों के थानेदार और तहसीलदार को वहां से मार भगाया और किले को अपने अधिकार में कर लिया। वहां उसने आसपास के ठाकुर लोगों पर जुल्म करके उन लोगों से धन वसूलना भी शुरू कर दिया और बड़ी धूमधाम के साथ अपना राज्य अभिषेक करके महाराज सदाशिव राव नारायण की पदवी धारण की और ये प्रचारित कर दिया कि मैं झांसी राज्य का सच्चा अधिकारी हूँ। उसने अपने नाम से आज्ञा पत्र प्रकाशित किए और गांव-गांव में अपने राजा बनने का समाचार पहुंचा दिया। उसने आषाढ़ बदी अष्टमी संवत 1914 को राजपुर के थानेदार गुलाम हुसैन को ये आज्ञा पत्र भेजा कि हमने तुमको राजपुर का थानेदार नियुक्त किया है, तुम गांव-गांव जाकर यह बता दो कि महाराज सदाशिव राव झांसी की गद्दी पर विराजमान हुए हैं। थानेदार ने इस आज्ञा को नहीं माना। तब उसने ये आज्ञा दी कि गुलाम हुसैन को अपने पद से अलग कर दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इस तरह उसके अत्याचारों से सारी प्रजा दुखी हो गई। जब ये समाचार महारानी लक्ष्मीबाई को पता चला, तब उन्होंने इधर उधर से सेना इकट्ठी करके झांसी राज्य की रक्षा के लिए करेरा पर चढ़ाई कर दी। सदाशिव राव ने वहां से भागकर महाराज सिंधिया के राज्य में नरवर में आकर अपनी जान बचाई। वो वहां से फिर से झांसी का राज्य पाने की कोशिश करने लगा। इस बार महारानी लक्ष्मीबाई ने उसको पकड़कर झांसी के किले में कैद कर लिया और अंग्रेज सरकार के एक शत्रु का नाश करके झांसी प्रांत की रक्षा की। इस झगड़े से महारानी को अवकाश ही नहीं मिला था कि ओरछा राज्य के दीवान नत्थे खां ने 20,000 सिपाहियों को लेकर झांसी पर चढ़ाई कर दी। उस समय महारानी के पास थोड़ी सी सेना थी, इसलिए उन्होंने सेंट्रल इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट को पत्र द्वारा सारा हाल लिखा भेजा और उनसे सहायता मांगी। परंतु पत्र ले जाने वाले दूत को नत्थे खां के आदमियों ने रास्ते में ही मार डाला। आसपास से किसी की भी सहायता नहीं मिलने पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेज सरकार की सेवा और झांसी प्रांत की रक्षा के लिए वो खुद कोशिश करने लगी। उधर नत्थे खां ने महारानी को यह संदेश भेजा कि तुम्हारा जैसा आदर सम्मान अंग्रेज सरकार करती है, वैसा ही हम करने को तैयार हैं। तुम झांसी का किला और शहर हमारे हवाले कर दो। ये संदेश सुनते ही महारानी को बहुत गुस्सा आया। वे थोड़ी देर तक क्रोध की आग से अपने मन को जलाती रही और फिर कुछ शांत होकर बहुत गंभीर स्वर में अपने सलाहकारों से पूछने लगी कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। सलाहकारों ने नत्थे खां की सेना की ताकत अधिक देखकर बहुत ही नम्रता से कहा कि इस समय शत्रु की आज्ञा को मानकर युद्ध से मुंह मोड़ना ही ठीक दिख रहा है। सलाहकारों की ये बात सुनकर लक्ष्मीबाई का मन और भी संतृप्त हो गया और वो बोली, धिक्कार है आप लोगों को। मैं स्त्री होकर भी अपने साहस और धैर्य के बल पर अपने कर्तव्य का परित्याग करना नहीं चाहती, और आप पुरुष होकर भी ऐसी कायरता की बात कर रहे हैं। उनके इस बात को सुनकर सब लोग बहुत शर्मिंदा हो गए। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने नत्थे खां को ये कहला भेजा कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं इस राज्य का प्रबंध कर रही हूँ। आप जैसे वीर पुरुषों को स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। जब उसको यह समाचार मिला कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने को तैयार है, तब उसने क्रोधित होकर अपनी सेना को किले पर धावा करने की आज्ञा दे दी। इधर महारानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी प्रांत के बड़े बड़े ठाकुर और बुंदेले जागीरदारों को निमंत्रित करके राजमहल में एक दरबार किया। दीवान जवाहर सिंह, कटीले वाले पवार, दीवान दलीप सिंह, ओरछा के राजा के दामाद दीवान रघुनाथ सिंह आदि पुराने सरदारों के आने पर महारानी ने कहा कि आप लोग ओरछा के राजा के संबंधी और झांसी की गद्दी के ताबेदार हैं। आप लोगों को इस कुसमय में मेरी सहायता करनी चाहिए। इस पर लोगों ने कहा कि झांसी राज्य अंग्रेज सरकार के अधीन है, इस कारण इसको बचाने के लिए इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम हर तरह से सहायता देने को तैयार हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम युद्ध क्षेत्र से नहीं हट सकते। ये सुनकर महारानी को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने आगे कहा कि अब आप लोग युद्ध के लिए सामान इकट्ठा कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने जमीन में गड़ी हुई पुरानी तोपों को बाहर निकलवा कर ठीक करवाया और उन्हें किले के बुर्जों पर रखवा दिया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।